ओम शांति। आप सबका सौभाग्य कहो, पदम गुना भाग्य कहो, हमारे बीच में बहुत ही सरल चित यज्ञ रक्षक, यज्ञ के प्रति ईमानदार, सर्व के स्नेही, हम सब के लिए प्रेरणा मूर्त आदरणीय भाई जी पधारे हैं, आत्म प्रकाश भाई जी। तो हम सभी हिसार के सभी भाई बहने दिल से भाई जी का स्वागत करते स्वागत करते स्वागत करते। आपने 21 वर्ष की आयु में ज्ञान को प्राप्त किया। 1961 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने पर साकार बाबा के वरदानी बोलों ने ही आपको ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। आपने दिल्ली में एक बहुत बड़ी बाबा के यज्ञ की अंदर नोंदनीय बाबत कि आपने दिल्ली के अंदर सबसे पहले चित्रशाला बनाई और जिसके द्वारा फिर भारत भर के अन्य सेवा केंद्रों के अंदर म्यूजियम प्रदर्शनी आदि तैयार हुए। आप ज्ञानामृत तथा वर्ल्ड यूनियल के संपादक भी हो और हमारी जो भी ईश्वरीय साहित्य हम पढ़ते हैं तो ईश्वरीय साहित्य के प्रशासक भी हो। 1992 में प्यारे बाबा ने आपको शांतिवन बेहद घर में बुलाकर बेहद सेवा के निमित्त बनाया। तो आज हम सुनेंगे भाई जी से मम्मा बाबा के साकार मम्मा बाबा के साथ का अनुभव सुनाएंगे भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अति मीठे, अति प्यारे बाबा के बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप सभी, हम सभी। क्यों विचार करो, बातें तो बहुत है हमें हमारे भाग्य की, लेकिन आप अभी कहां बैठे हो? हैं? उस स्थान पर बैठे हो जहां पर आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देवी जगदम्बा सरस्वती यहां उनके पावन कदम पड़े। यही इस ये हाल तो नहीं था, बीच हिस्ट्री हाल था, जिनको हम बड़े प्यार से बाबा मम्मा कहते हैं, हैं तो वो कौन है? एडम एंड ईव, एडम एंड ईव। देखो ये दो तीन हस्तियां हैं जिसको सब दुनिया मानती है, एक तो गॉड को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को सब मानते हैं, चाहे वो कोई नास्तिक भी हो तो कभी ना कभी तो मानते ही है। दूसरा, सभी मेन धर्मों में ये दो हस्तियों को भी मानते हैं। मुसलमान कहते हैं आदम, बीबी कहते हैं, कहते हैं आदम बीबी, आदम हवा कहते हैं शायद ऐसा कुछ, और क्रिश्चियन एडम एंड ईव कहते हैं, और हम जगदम्बा सरस्वती और प्रजापिता ब्रह्मा या मम्मा बाबा कहते हैं। हमारे तो मम्मा बाबा है, नजदीक के हैं, हमारे तो दूर के नहीं है, नजदीक अपने अपने ही है। जैसे तो उस धरनी पर, जिस धरनी पर उन्होंने ये स्थापना का कार्य किया, जिनके मुखारविंद से महावाक्य उच्चारण हुए, वो सारे वर्ल्ड में फैले, जो बीज है जैसे सेवा का और सारे ब्राह्मण परिवार का और सारे विश्व का, ब्राह्मण परिवार से सारा वृक्ष पैदा होता है, आगे पे बढ़ता है, उस स्थान पर आए हैं आप क्या करने, भट्टी करने के लिए आए। कितना बड़ा सौभाग्य है बताओ आपको, बहुत बड़ा। ताली बजाओ, ताली बजानी नहीं क्योंकि आप साइलेंस में है, कोई ताली नहीं बजाओ। रियली आपको ये चांस मिला है कि आप यहां पर आकर भट्टी करें, रिफ्रेश हो और अपने विकर्मों का विनाश करें। विकर्म तो आप बहुत कम बचे होंगे, ज्यादा तो होगी नहीं, बहुत समय से ज्ञान में चल रहे हैं। तो ये आपको मौका मिला, एक बहुत बड़ा सौभाग्य, और हमारा भी सौभाग्य है। वहां कहा हम हिसार में आपसे मिलने के लिए आते हैं, शायद ही कभी आते हैं। तो आपसे भी कोई यहां मिलकर के बहुत मुझे खुशी हो रही है, और क्योंकि हम भी उसी इलाके के, आप जानते हो कुरुक्षेत्र उसके पास ही है, और उस इलाके में काफी कार्य किया, और हमने पढ़ाई भी वहीं पर पटियाले में की, पंजाब में की, और पढ़ाई करते करते हमें ये ज्ञान मिल गया। उस वक्त जैसे कहा 21 साल की 20 साल की एज थी, 1957 मैं सोचता हूं आप में से बहुत सारे तो पैदा भी नहीं होंगे, बहुत छोटे होंगे, होंगे तो 1957 में बाबा ने हमको चुना। देखो आपको सभी ने किसने चुना है, बाबा ने चुना है ना। इतनी बड़ी दुनिया देखो, 7 बिलियन 700 करोड़ आबादी है इस वक्त दुनिया की, 700 करोड़, उसमें से कितने हम हैं, अभी कहते हैं 9-10 लाख है, उसमें से भी कोटों में कोई कोई कितने बाबा के रियल धारणा युक्त और बाबा के मददगार बच्चे कम ही होते हैं ना। तो आप उनमें से हैं जो जिसने के बाबा ने आपको चुना है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं तो कहीं से कहता हूं कि आपको ये ज्ञान समझ आया, कहता आ गया। मैंने कहा आपको ये ज्ञान भी समझ आ गया ना, ये आपका बहुत बड़ा भाग्य है। ये ज्ञान इतना यानी भिन्न है दुनिया से, भगवान वो ज्ञान तो देगा नहीं जो दुनिया वाले देते हैं, या शास्त्रों का ज्ञान है, या कोई ऋषि मुनि साधु सन्यासी देते हैं, उससे तो मिलता नहीं। आप देखो भले कोई कहता जी वो वहां पर वो भी ऐसे कहता है, वो भी ऐसे कहता है, हम नहीं मानते। जो चीज शिव बाबा ने बताई है, भगवान ने बताई है, कोई भी बता नहीं सकता, क्योंकि वही सत्य है, वही शिवम है, वही सुंदरम है, और कोई है ही नहीं। तो हम भी इस ज्ञान में जब आने अभी आना था तो हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो एक भाई ने हमें ज्ञान दिया, यही वो कहता था ऐसे ही को ज्ञान दे जो जिसकी कहते ना वो बिच्छू वहां डंग मार, बाबा कहते वहां लगाया जहां नरम जगह हो। वो ढूंढ रहा था, वो अंबाला से ज्ञान सुन के आए थे, प्रातः ओम प्रकाश जी, हमने नाम सुना हो शायद, इंदौर में थे वो, तो वो ढूंढ रहे थे किसी को ज्ञान दे ताकि मैं सेवा करूं। वो कभी जब ज्ञान मिल गया तो पढ़ना नहीं चाहता था इंजीनियरिंग, तो विशेष बाबा ने उनको पत्र लिखा, बच्चे तुम पढ़ो और तुम्हारे लिए बहुत आत्मा इंतजार कर रही है। तो हमारे पास पटियाला में आए, वो साथ साथ हमारा रूम था, उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया, हमने सुनना शुरू किया, बहुत दिन तक डिस्कशन होती रही। वो कहें आप आत्मा हैं, मैं की प्रूफ क्या इसका बताइए, आत्मा का क्या प्रूफ, हमें दिखाइए आप क्या प्रूफ। काफी दिन तक यही कह रही वो, आप आत्मा है, हम कह हम आत्मा नहीं है, चलते रहे बहुत दिन। एक दिन उसने अंदर समझते थे आत्मा तो है ही, हिंदू धर्म में तो आत्मा को मानते ही है, पुनर्जन्म को भी मानते तो थे, लेकिन फॉर दी सेक ऑफ डिस्कशन काफी दिन बात होती रही। एक दिन उन्होंने मुझे कहा आज आप मान जाओ कि आप आत्मा है, आप मानेंगे। मैंने हाथ मिलाया कि आप आज मान जाओ कि आप आत्मा है, तो मैंने कहा हाँ जी मैं आत्मा हूं। बस इतना बोलना था कि मैं आत्मा हूं, ये बोला, उसी समय से अनुभूति होनी शुरू होगी। आत्म स्वरूप में टिक गए, अभी कोई ज्योति बिंदु की बात भी नहीं थी, आत्मा क्या है उसकी पता भी नहीं, आत्मा है बस केवल। आपको मालूम हो पहले जब दादियां बाबा ने पहले ज्ञान शुरू किया, पहले आत्मा का ज्ञान शुरू किया, शिव बाबा की बात तो बाद में हुई और ब्रह्मा बाबा की बात भी बाद में हुई, पहले यही कि तुम सब आत्मा हो, बस इतना ही था। हमें भी यही कहा कि तुम आत्मा हो, मैंने आत्मा कहा एकदम सोल कॉन्शियसनेस शुरू हो गया, जिसको भी देखे ये भी आत्मा ये भी आत्मा, दृष्टि वृत्ति भी प्योर होगी उस वक्त। तो एकदम बाजार में जाएं, एक अनारदाना चौक है वहां पर, वहां जाया करते थे वो पटियाला में, जिसको भी देखे इसके मस्तक में आत्मा है, ये भी आत्मा ये भी आत्मा ये भी आत्मा, उसके सिवाय बॉडी दिखे ही नहीं। ऐसी बाबा ने अनुभूति करानी शुरू की। बाबा क्योंकि उस वक्त फ्री थे, अब तो बाबा बहुत बिजी है, उसका बच्चे बहुत कम थे, सेवाएं बहुत कम थी, सेंटर बहुत कम थे, दादियां बहुत थी, उसका दादी तो नहीं कहते बहने कहते थे, वो भी फ्री थी, सेवा केंद्र खुलने थे, अभी सेवा शुरू हो रही थी। बाबा ने ऐसी अनुभूति कराई, चलते फिरते खाते पीते आत्मा निकले ही नहीं, मैं आत्मा हूं बस। हमारा वो सर्वे होता है इंजीनियरिंग में, सर्वे में जाऊं तो वो भी ये भी आत्मा ये भी आत्मा, सबको आत्मा ही देखना शुरू कर दिया। एकदम इतना हल्कापन, खुशी, आनंद और मजा आ गया, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, ये क्या हो रहा है ये। तो उसको मैंने कहा भी आपको तो एक ही बात से मुझे इतना अनुभव हो रहा है, आप मुझे और बताओ और तुम्हारे पास क्या खजाना है, बताइए क्या है तुम्हारे पास। उसने एक दिन में परमात्मा सेवा है, वो भी आश्चर्यजनक बात, हम भी परमात्मा को मानते थे, परमात्मा आप सोचो दुनिया में कोई कहता है कि परमात्मा सेवा है, शिवशंकर कह देते हैं, किसी बड़े विद्वान आचार्य पंडित से पूछो शिवशंकर क्या है, किसी को पता ही नहीं है, हम बताएं आपको कोई जानता नहीं है, शिव शंकर अलहदा है और शिव अलहदा है, शंकर अलहदा है, शिव परमात्मा है, ये निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा है, किसी को नहीं पता। तो जब ये बताया शिव परमात्मा है, हम वो पढ़ते थे तो जाया करते थे मंदिरों में, वो कोई दुख भजनेश्वर आए, कोई स्थानेश्वर का मंदिर आए, कोई विश्वेश्वर का मंदिर, हमारे आसपास कुरुक्षेत्र में बहुत मंदिर आए ऐसे ऐसे नाम भिन्न, और वो शिवलिंग पड़ा हुआ है, वहां सांप भी घूमते रहते थे चेतन में भी। तो हम कहते थे ये क्या है शिवलिंग, परमात्मा ही शिव है, कितनी बड़ी बात है, कितनी भी रेवोल्यूशनरी बात है। हमें तो रोज मालूम पड़ता है शिव भगवान, पता लग गया ना हमको, हमको बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन वंडरफुल बात है ये सुना बड़ा आश्चर्य लगा। उसके बाद सारी बातें सुनी, और वो जितनी बातें थी, परमात्मा शिव है, परम धाम क्या है, परम धाम का वासी है, हमारा घर वो है, दुनिया मुसाफिर खाना है, सब बातें ऐसे लगे जैसे कि मुझे रिवील हो रही है, बिल्कुल नई बातें, जो कोई रिवील अंदर से कोई रिवील हो रहा है। मुरली सुनी तो बिल्कुल जैसे लगे पहले मैंने सुनी हुई है, हम बताएं क्लियर आपको। अब सृष्टि चक्कर 5000 वर्ष क्या है, लोग मूंझते हैं इस बात पर, बड़े मूंझते हैं। हमें तो लगा बिल्कुल ठीक है, गीता में कहा है कि ये हूबहू रिपीट होता है, ये भी कहा है, अर्जुन हम पहले भी थे अभी भी आए फिर भी मिलते रहेंगे, कमाल है। तो बात वही है, जो बात सुने किसी में कोई संशय नहीं, एक एक बात पर लगे कि जैसे कि मेरे अपनी बात है, बंदर लगता था, बहुत अच्छा लगे, पतित पावनी गंगा नहीं ये नहीं, सब बातें ठीक लगी, किसी पर कोई संशय नहीं आया इस ज्ञान को सुनकर के। टाइम भी लगा, 2-3 दिन में सब ज्ञान सुन लिया कि बड़ा अच्छा लगा, मुरली सुननी शुरू कर दी। तो फिर हमने कहा भाई जो आप ज्ञान सुना रहे हैं ये मिला कहां से आपको ये चीज, उस वक्त त्रिमूर्ति झाड़ कोई नहीं थे, ब्रह्मा बाबा को कोई चित्र भी नहीं था, न बाबा अपन चित्र बनवाने देते थे, हम बता दें आपको। उसके बाद तो उसने कहा देखो ये शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा द्वारा ज्ञान दे रहा है, बाबा मम्मा है, आप इसको चाहो तो मिल के आ सकते हैं। तो फर्स्ट बाबा मम्मा उन दोनों में सर्दियों में दिल्ली में आया करते थे, 1957 की बात है। तो हम तो अभी आज ही जाएंगे मिलने के लिए, लेकिन अभी नया नया था, उन्होंने भेज दिया टेलीफोन किया, मालूम नहीं उनको टेलीफोन की सुविधा भी बहुत कम होती थी। हम पहुंच गए बाबा मामा से मिलने के लिए, रात के 11 बजे पहुंचे रजौरी गार्डन में। तो सुबह उठे रात्रि को ही अनुभूति हो रही थी मुझे, जैसे कोई हम उड़ रहे हैं ऐसा लगता था। तो सुबह मिले बाबा मामा से, क्लास हुई बाबा मामा से मिले, क्या देखा बाबा मम्मा ने, बाबा की टावरिंग पर्सनैलिटी आप देखिए, एकदम यानी गोरा जिसे कहना चाहिए, एकदम हाइट इतनी बड़ी यानी 6 फुट से होगी लगभग, टावरिंग पर्सनैलिटी थी। और ऐसा बाबा मम्मा ऐसे लगे जैसे कि हमारे यही रियल में माता पिता है, ऐसा हमें वहां से फीलिंग आई। बाबा से हमें पता ही था मिलना कैसे होता है, आप तो बताते हैं क्या मिलना कैसे मिलना। वहां तो बाबा मम्मा की गोद में जाते थे सारे, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, माता हो कोई छोटा हो बड़ा हो, गांव का हो कैसा हो, गरीब हो अमीर हो, सब बाबा मम्मा की गोद में जाते थे। माँ बाप थे हमारे जैसे, ऐसे हम भी बाबा की गोद में गए, बड़े आंसू भाए, फिर मम्मा की गोद में गए, तो बाबा ने देखा तो बाबा ने फिर एक वो दिया, वरदान दिया। आप वरदान सुन के भी आश्चर्य कहेंगे, ये वरदान दिया बच्चे, और उस समय भी लगता था विनाश आया क्या है, जैसे अब लगता है ना आपको, अब भी लगता है, आप मुरली पढ़ेंगे तीन बातें बाबा रोज कहता है डेली। एक बाबा कहता है कि विनाश सामने खड़ा है, कभी सिर पर खड़ा है, ये भी कह देती है सामने खड़ा है, विनाश आएगा, जो चीज सब ये देख रहे हो कुछ दिखेगा नहीं, ये सब नष्ट हो जाएंगी, सत्य में सब नई चीज होगी। रोज मुरली में किसी न किसी रूप में बाबा रोज कहता ना ये बात, आप मुरली कोई पढ़ लो उसमें बाबा ये बात अवश्य कहता है कि जागो, समय नजदीक है, विनाश सामने खड़ा है, कुछ जो कुछ भी देखते हो सब खत्म होगा, नई दुनिया आएगी। फिर कहता है सत्ययुग आएगा, नई दुनिया आएगी, ये बात भी कहता है। और तीसरा कहता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। सारी मुरली जो चलती है इन तीन बातें तो वो जरूर होती होती है। तो तभी भी बाबा ने मुझे कहा बच्चे इतने चार साल पढ़ाई, पांच साल पढ़ेंगे कोई काम आने वाली नहीं है। बोलो अभी मैं पांच सात दिन का बच्चा हूं, इतना बाबा स्पष्ट कह रहा है दूसरों को पहचान करके, उनकी परख शक्ति देखिए। अभी नया नया बाबा का बच्चा, बाबा ने कहा बच्चे ये इंजीनियरिंग की तुम्हारी पढ़ाई काम आने वाली नहीं है। तो मैंने कहा मुझे पहले बार आग आ चुका था मैं, ठीक है नहीं काम आने वाली तो क्यों पढ़ा जाए फिर इसको। तो हमने कहा ठीक है, मम्मा ने भी, मम्मा से मिले उनने भी यही कहा जो बाबा कह रहे हैं वो सत्यम है। तो हम जब वापस आए सारा समझ करके सोच करके, हाँ उस वक्त क्या होता था क्लास के बाद बाबा मम्मा हम सब बच्चे जो थे पीछे पीछे चलते थे, क्लास घूमने जाते थे थोड़ा दूर तक बाबा घूमते थे। तो मैं अब देखता था कि इतना चाय पिलाई जा रही है, खाना खाया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, टोलियां खिलाई जा रही है, यहां ना कोई भंडारी है ना कोई किसी को कहता है, ये चल कैसे रहा है। तुम्हारी जो ब्राह्मणी थी जहां मैं ब्राह्मणी बनाई थी, कोई अभी हम ब्राह्मणी के साथ तो नहीं गए थे, एक लीला चटनी थी, आपने सुना हो देखा हो किसी ने, वो शाहबाद में थी और हम वो हमें बाबा मम्मा से मिलाती थी करती थी। तो मैंने पूछा ये कैसे चल रहा है सारा यज्ञ, यज्ञ की बात नहीं थी, इतना सिस्टम चल कैसे रहा है। तो मम्मा साथ थी, मम्मा को उसने कह दिया, मम्मा ये पूछ रहा है कि कैसे चलता है। और मम्मा की ये हमेशा एक वो थी, बात कहने का तरीका था, कभी वो मुख से नहीं कहती थी, वो मुस्कुराती थी। कोई किसी को बात कहनी हो ऐसे मुख से बोल करके नहीं, पहले वो मुस्कुरा देंगी, उनके मुख से मुस्कुराहट निकलेगी। फिर मम्मा ने ऊपर इशारा ऐसे कर दिया ऊपर की तरफ, यानी ऊपर से आता है। हमने समझा क्या पता ये ध्यान में तो दादियां जाती हैं, ये हो सकता है ऊपर से ही आता हो, कुछ कहता है नहीं किसी को, कोई ना कोई कहता है ना कोई बोलता है ना कोई इशारा करता है। भाई चलो यहां, आप तो बहने इशारा भी करती है, पर्ची भी लिखवाती होंगी, म्यूजियम बनना ये बनना बनता है, होता ना उस वक्त तो कोई सिंपल किसी का इशारा भी नहीं था। इतनी रॉयल्टी थी, मम्मा ने रॉयल्टी से कहा ऊपर ऐसे इशारा कर दिया। तो मैं फिर बाद में पता लगा भी चलता कैसे मालूम तो सबको पड़ ही जाता है। तो ये मम्मा की हैंडलिंग थी कि कभी कोई बाबा कहता मांगना नहीं है तो वो तो इशारा भी नहीं करते थे। तो हम वापस आए तो बाबा को लेटर लिखा कि वैराग बिल्कुल आ चुका था कि विनाश सामने खड़ा है, तब भी लगता था सामने खड़ा है। हम बताएं आपको जैसे अब लगता है ना, अब तो बिल्कुल लगता है, लगता ही नहीं लगता अभी आपको, हर रोज एक वो आ रहा है भूकंप डेली आता है आजकल, आपको मालूम हो उस वक्त कोई एटम बम भी नहीं बने थे जब बाबा को साक्षात्कार हुआ था, एटम बम तो बाद में बने, सेकंड वर्ल्ड वार तो बाद में हुई। तो बाबा ने तभी कहा था बच्चे, महाविनाश बाबा ने देखा था कैसे बम फट रहे हैं, प्रकृति हमारी वो सारी वो कर रही है, बहा के ले जा रही है, लोग डूब रहे हैं, हाय कर रहे हैं, ये बाबा को दिखाई दिया। और ये आपस में सिविल वार हो रही है, ये बाबा को महाविनाश के सीन दिखाई दिए। बाबा ने कहा बस और मत दिखाओ। तो ऐसा हो रहा है, आप देखो अभी तीन चार साल में क्या हुआ, दो तीन साल में क्या हुआ, कश्मीर में हुआ, इतना पानी झेलम में आया कि कहते 100 साल पहले इतना पानी नहीं आया, रिकॉर्ड टूट गया। ये बता दें आप, उत्तराखंड में क्या हुआ, फैमिलीज की फैमिली तबाह होगी, और हेलीकॉप्टर उस 50 में से 5 लाया और 45 वहीं डूब गए, अपने आंखों के सामने हुआ, देखा आप लोगों ने, कहता इतना रिकॉर्ड ऐसा कभी हुआ नहीं। अभी चेन्नई में क्या हुआ थोड़े दिन पहले, आपको मालूम हो, इतनी एक महीना वर्षा हुई, कहता ऐसा 100 साल तक ऐसा कभी नहीं हुआ, सब रिकॉर्ड टूट रहे हैं, अति हो रही है। अच्छा फिर नेपाल में क्या हुआ, और आजकल तो हर जगह हर समय भूकंप आता रहता है, धरती हिल रही है। एक भाई वहां पर कश्मीर में था, शायद पंजाब का ही था, उसने बताया मुझे, हम तीसरी मंजिल पे थे तो पानी चढ़ रहा था, हमारे पास इतना सा पानी था और थोड़े कच्चे चावल थे, हम दो थे, खा खा के जिंदा रह गए, फिर मिलिट्री लेगी। उसने कहा वही सीन मैंने देखा, लोग हाय हाय कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। ये हम बताएं फिर ये बहनों और भाइयों, अब विनाश में कोई देरी नहीं है, तो करना क्या है, हमें डरने की बात तो है नहीं, डरना नहीं है, हम तो किसके हैं, शिव बाबा की कहाँ है, छत्र छाया में, लेकिन छत्र छाया में रहना है, बाबा को साथ पकड़ के रखना है। तो ये जब तभी हमें मालूम पड़ा, लगता था कि विनाश, तब भी ऐसे लगता था कोई ना कोई झगड़ा 1857 में हुई थी लड़ाई, तो 1957 मैंने कहा भी होगा, 100 साल के बाद होता है तो अभी होना शुरू हो जाएगा कुछ। तो हमने बाबा को लिखा, इंग्लिश में लेटर लिखा बाबा को, इन इंग्लिश, और बाबा का भी इंग्लिश में जवाब आया, बड़ा सुंदर पत्र इंग्लिश में बना के लिखा। तो बाबा को लिखा कि बाबा आई डोंट वांट टू बिकम डिजाइन बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, बट आई वांट टू बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ह्यूज एडिफिस विच यू आर इरेक्टिंग ऑफ गोल्डन एज, जो आप एक सतयुगी दुनिया बना रहे हैं उसमें एक मैं भी छोटा सा पत्थर बनना चाहता हूं। ऐसे लंबा पत्र था, फिर लिखा मैंने आई डोंट वांट टू रन ऑन डिजाइन हाईवेज एंड रोड्स, बट आई वांट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम एंड गोइंग देन कमिंग टू गोल्डन एज, ऐसे और लिखा। तो बाबा ने बड़ा एक दिन के अंदर जवाब आया, बच्चे देखो ये बताएं आपको, जो बाबा कहते थे हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते, पूरा ना भी कर सके स्थूल तो पूरा करते थे। बाबा ने कहा चाइल्ड बी पेशेंट, बाबा का उत्तर आया इंग्लिश में, गिव दिस नॉलेज टू योर पेरेंट्स एंड टू योर को इंजीनियर्स, ये शब्द है भगवानों वाच, हमने कोशिश कर दी। हॉस्टल में ये जहां रहते थे वहां ही अपना एक कमरा बना करके क्लास चालू कर दी, कई लोग आए, सुना ज्ञान सुनाया उनको, उन दिनों में त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी वो ले जाकर बांटते थे, पढ़ो भाई, उन दिनों में क्या होता था कि ये आजकल के योग के अनुभव ये वो अनुभव वो नहीं होते थे जैसे ज्ञानमृत में होते हैं। उन दिनों में अगर आप मैगजीन का एक पेज खोलोगे परमात्मा सर्वव्यापी, पहला सब्जेक्ट तो ये होगा, दूसरा खोलोगे गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, तीसरा खोलोगे पतित पावनी गंगा नहीं, देखते जाओ, फिर खोलोगे कि 84 लाख यूनियन नहीं। तो लोग कहते थे आपका ज्ञान है कैसा ही, कोई बात हमारे से मिलती भी है, मैंने कहा इसलिए तो नहीं मिलती कि भगवान ज्ञान दे रहे हैं। तो उनको कहता बताओ मुझे आप, ऐसे जो हॉस्टल के लोग थे, मैंने कहा आप बताओ सर्वव्यापी आप मानते, इतना जोश था, इतनी हमारी वो मोमेंटम था, इतना एंथुजियाज्म था, सर्वव्यापी आप मानते हो, देखो ये एक आदमी दूसरे आदमी को मार, जो भी आर्गूमेंट है क्या भगवान भगवान को मार रहा है, ऐसी दो चार आर्गूमेंट्स वो मान जाता था, बात तो तुम्हारी ठीक है। जो हम बोलते थे वो मान ही जाते थे। कई स्टूडेंट बन के हमारे वहां क्लास में, बाबा ने वरदान दिया अपने को इंजीनियर्स को बताओ तो हमने बनाना शुरू कर दिया, प्रोफेसर को अपने दोस्तों को लेटर लिखने छोड़ के, गॉड हैज कम, परमात्मा आ चुका। अभी तो हम बोलते हैं ना भगवान आया है, जागो जागो, हमने तभी से करना शुरू कर दिया। तो बड़ा अच्छा लगा लोगों को, कईयों को लगा। फिर वार्डन ने कहा भी आप यहां ये काम नहीं कर सकते, आप बाहर जाओ। फिर हमने कमरा छोड़ के बाहर में हॉस्टल से लिया कमरा, वहां गीता पाठशाला खोली, बहनें आई, क्लास हुई, पटियाला सेंटर खुला। तो वो उसके ये बात तो होगी, सेवा शुरू कर दी। उसके बाद बाबा ने कहा था अपने लोग के घर वालों को ज्ञान दो। देखो हम घर में गए, माता पिता को ज्ञान दिया, अड़ोसी पड़ोसों को ज्ञान दिया। तो हमारे लौकिक पिताजी बड़े भगत थे बहुत, उन्होंने इतनी भक्ति की हुई थी श्री कृष्ण की, राम की, जितनी भी होती है, रोज वो भागवत पढ़ पढ़ के लोगों को सुना सुना के बहुत सुनाते थे। वो उनको सारे शहर में भगत ही कहते थे, ओ भगत जी, क्योंकि वो ये भक्ति बहुत करते थे। वो कहते उनको ज्ञान अच्छा लगा, कहते बात तो आपकी राइट है परंतु एक मेरी शर्त है। उसने शर्त रख ली मेरे पास, आप हैरान होंगे कि अगर आपका बाबा, अभी उसने बाबा को तो माना नहीं था, अगर आपका बाबा मुझे कोई साक्षात्कार करा दे, कोई मुझे दिखा दे, तब मैं उसको मानूंगा। मैंने कहा मुझे अभी तक तुम्हारी साक्षात्कार, मैं तो देखता हूं दादी ध्यानी आती है, वो यूं करती हैं, फूल देती हैं, कभी कुछ संदेश लाती है, मैंने तो देखा नहीं अभी तक। तो आपको मैं कैसे रिकमेंडेशन दे सकता हूं कि आपको दिखाए। तो फिर हम एक दिन गुरुवार के दिन भोग में बैठे, हम सब परिवार के और भी थे, छोटी हमारी सिस्टर ये सब। तो वो उठ के खड़े हो गए, हमारे लौकिक पिताजी बड़े पढ़े लिखे नहीं, नंबरदार गांव के, केवल उर्दू जानते थे, गुरमुखी जानते, हिंदी भी नहीं जानते थे। तो मैंने उनको उर्दू में लिख दिया था, अभी तो महात्मा हो परमात्मा की संतान जो है ना, कमेंट्री ये लिख के दे दी। वो उसको चलते फिरते याद करते जाते थे खेतों में भी। तो वो कहे बात तो ठीक है लेकिन मुझे कुछ दिक्कत है नहीं। तो उठ के खड़े हो गए, तो उठ करके किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी ये पकड़ते हैं, कभी वो पकड़ते हैं, कभी वो पकड़ते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं आता, पकड़ते हाथ में नहीं आता। तो फिर वो थोड़ी देर के बाद जैसे फिर नीचे उतरे, आंख बंद की आंख खोल दी, और फिर मुझे मैं क्या हुआ, मैं तो खुश हो रहा था, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हैपन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। मैंने क्या हुआ पिताजी आपको क्या हुआ, कहते मैं ऊपर कहीं गया तो बहुत छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण, बहुत सुंदर, मैं देख रहा था लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं सका, यहां जाता हूं वहां जाए, वहां जाता हूं वहां जाए, वहां जाते वहां जाए। और फिर आपके बाबा जी आए जो आपके हैं, उन्होंने कहा बच्चे जब तुम निश्चय बुद्धि बनोगे, धारणाओं पर चलोगे और ज्ञान को पूरा फॉलो करोगे, तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। ये उन्होंने, बाबा ने भी शर्त रख दी ऐसे जो मुझे सुनाया उन्होंने। तो हम फिर अगले दफा भी अगले गुरुवार को भोग में गए, भोग लगाते थे खाना, वो फिर वो ध्यान में गए, ध्यान में गए, फिर वो श्री कृष्ण जी दिखाई दिए उनको। वो श्री कृष्ण के अति भगत थे बहुत, वो उनकी गोद में आए, बड़े उसके आंसू बहाए, हम देख रहे हैं, सब गांव वाले भी देख रहे हैं पंडित भगत जी को क्या हो गया है, आंसू बहाए, बड़े खुश हुए और उनकी तृप्ति होगी जैसे। उसके बाद जब सब हमारे परिवार वालों ने देखा है तो इसको साक्षात्कार हुआ है, सारा परिवार ज्ञान में चलने लगा, माता जी, पिताजी, बहन, तीन चार दो तीन भाई, सब आसपास के भतीजे वगैरह जितने सब, उन्होंने माना भाई जब ये ध्यान में जा चला गया है तो उनको प्रभाव पड़ा कि कितनी बड़ी बात है। तो फिर वो बाबा के पूरे बच्चे बन गए। फिर हमने सब लोग अपने पढ़ते थे या पढ़ाते थे या सर्विस में थे, हम गांव वाओं को सब बेच बाज के सब छोड़ छाड़ के हम सारे ही इस ईश्वरीय सेवा में लग गए। लगभग कोई अपने कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए, अपना सब चला गया। उसके बाद वो बाबा से मिलने आए, कई दफा मिलने आते थे बाबा के पास, यहां महीनों रहते थे, और जब बाबा आते थे बॉम्बे दिल्ली तो वो पीछे रहते थे, मम्मा उनको गद्दी पर बिठाती थी, उस टाइम प्यारा लाल था, जाओ बाबा को भोग लगा के आओ, ऐसा भी यहां पर करती है, हिस्ट्री हॉल में हम भी देखते थे। इस प्रकार से सारा परिवार ज्ञान में आ गया, हम भी ज्ञान में आ गए। हम पढ़ने का हमारा दिल था नहीं आप जानते हो, क्योंकि डिसइंटरेस्ट हो गया था। जब बाबा कहता है विनाश सामने कर, हमें भी लग रहा है विनाश सामने, क्यों पढ़ाई करें, वाई टू वेस्ट मनी। लेकिन पता नहीं कैसे करते करते वो 4 साल हमारे पार हो गए। और विदाउट स्टडी आई टेल यू, कभी कभी क्लास में गए, कभी नहीं गए, कभी बाबा आ रहे हैं, कभी मम्मा आ रहे हैं, कभी प्रदर्शनी है, कभी कुछ है, कभी फंक्शन है, कभी दादी जानकी जी आ रहे हैं, कभी दादी रुक्मणी जी आ रहे हैं। ऐसे से हम वहां पटियाला में आसपास नाभा में फंक्शन करते रहते थे, सेवा में बिजी थे बहुत। तो कभी हम हापुड़ जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। आप बताओ इंजीनियरिंग स्टडी, एक भी लेक्चर मिस करेंगे अगला लेक्चर समझ नहीं आता था। हमने नहीं पढ़ाई की, फिर भी पता नहीं कैसे पास हो गए। हम मानेंगे विदाउट स्टडी, विदाउट एनी इंटरेस्ट, हम चाहते नहीं थे। लोग के घर वाले भी क्या, जैसे आपकी मर्जी, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी है। फिर भी ड्रामा अनुसार डिग्री लेनी थी, भाई चलो डिग्री मिल जाए अच्छा है, तो पास हो गए। एक बड़े अजीब बात, डिग्री हम पास हो गए। और मैं कभी डिग्री लेने नहीं गया मैंने क्या। हाँ फिर हम जब इंजीनियरिंग पास करके आए, बाबा मम्मा के पास आए, अपने लोग माता पिता को पास ले, साथ लेके आए, तो बाबा ने कहा था बच्चे देखो मैंने कहा था तुम्हारी पढ़ाई काम आने वाली नहीं है। तो कोई काम नहीं आई, ना हमने कोई मकान बनाया, ना दुकान बनाया, ना कोई सड़क बनाई, कुछ नहीं बनाया। हम तो किसी और कार्य में लग गए। तो कौन सा कार्य, बहन जी ने बताया ना, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में आ गए। तब बाबा ने कहा अच्छा बच्चे अब सर्विस बढ़ रही है, तुम जाओ दिल्ली भेज दिया हमको। किसके पास, भ्राता जगदीश जी को जानते हैं आप, कौन जानता है, हाथ खड़ा करे थोड़े आजा। हमारे जो बड़े एक भाई जो सारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय को ईश्वरी विश्वविद्यालय का रूप देने वाले, सारे बड़े भारी लेखक, बड़े भारी योगी, ज्ञानी तो आत्मा जगदीश भाई थे, जिन्होंने कितनी सैकड़ों किताबें लिखी है। पहले तो क्या होती थी, थोड़ी 16 पेज की किताब, 32 पेज की किताब, अब मोटी मोटी किताबें जो है वो लिख के रखी हुई है। वो भी है सारे चीफ स्पोक्समैन इतने थे वो, तो जिससे कि उनके साथ हमें रहने का मौका मिला। जो वो कार्य कहते थे हम भी ट्रेंड हो गए। वो भी समझते थे पता नहीं बाबा ने आप जैसे को मेरे पास क्यों भेजा, एक इंजीनियर है, डिग्री होल्डर है, अगर जॉब करता तब भी कोई अच्छी इनकम होती, वो भी यज्ञ में लगती। हाँ हमारे पिताजी ने अपने मम्मा से पूछा, मम्मा अगर ये जॉब करेगा तो हमें पैसे की दरकार नहीं, सेवा में लगाकर तो क्या हर जाए। मम्मा ने कहा नहीं, बाबा भृगु ऋषि है वो आदि मध्य अंत को ये बच्चे के जानता है, इसलिए जैसा बाबा ने कहा है वैसा कर। तो हम तभी से डिग्री लेने नहीं गए, बाद में ली क्योंकि पासपोर्ट वगैरह बनाना पड़ता है। कभी अभी क्या डिग्री लेंगे तो फिर कभी दिल कर जाए भी नौकरी कर लो, जॉब कर लो, मगर नो, हम कहते थे नो ग्राउंड टू स्टैंड अपॉन, हमें एक बल एक भरोसा चाहिए, ये चाहिए। देखो मैं एक वो स्टोरी सुना करता था, तो वो हमारे कहीं आती भागवत में, एक वो यात्री था, यात्री था तो वो भगत था, वो यात्रा पर निकला अपनी गठड़ी बांध के, और उन दिनों में गठड़ी बांधते थे, कोई ट्रंक होता ही नहीं, बैग नहीं होते थे, और उसमें सामान वगैरह पैसे वैसे सब कुछ थे। तो साथ में 2-4 लोग और भी मिल गए जो कि खराब लोग थे। जब रात्रि हुई उसको पकड़ लिया, सब सामान लूट लिया, उसको डाल दिया कुएं में अंदर। बेचारा कुएं में जा रहा है और बहुत गहरा कुआं था, करते करते उसके हाथ में बेल आ गई, वो ये लटकी होती है बेल, खराब उसमें बेल को पकड़ करके खड़ा हो गया वो। तो अब वो देखा जब सूर्य निकला तो देखा, तो नीचे देखा तो अजगर बैठा है, सांप बैठा है, ऊपर देखा जो बेल है वो चूहा काट रहा है इसको, कभी भी काट के मैं नीचे जा सकता हूं। तो ये हमारी ये है नो उसको ग्राउंड, उसको क्या करना पड़ेगा तब, अगर वो देर करता है तो फिर नीचे गया, अगर वो जल्दी नहीं करता तो वो क्या करेंगे, वो खत्म हो जाएगा। तो यही बाबा कहते हैं बच्चे समय रूपी चूहा टाइम खत्म कर रहा है, यानी जो स्थाप जो संगम योग का टाइम है दैट इज गोइंग ऑफ, जा रहा है, बीत जा रहा है, बीता जा रहा है। और अगर आपने धरती पर पौरों का देह मान में आए तो क्या होगा? अजगर है वो पांचवें। बाबा हमेशा कहते हैं सबसे बड़ा जो विकार है जो वो है देह अभिमान, सब विकारों की जड़ है। इसीलिए हमने कहा अगर हम डिग्री ले लेंगे फिर भी कोई ना कोई सहारा होगा, कोई सहारा नहीं चाहिए, सिवाय बाबा के और चाहिए नहीं, चलते रहे। और वहां पर ट्रेनिंग ली जगदीश भाई ने, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ समझाया किया, तो सेवाएं वहां करते रहे। फिर हम बताए और आगे सर्विस कैसे बढ़ी। हम एक बार बाबा से मिलने तो हर साल आते थे, अब तो साल में अब कई दफा आते हैं, तब तो साल में एक दफा गर्मियों में आया करते थे, बाबा से मिलते थे, थोड़े लोग होते थे, ना ये हिस्ट्रियाल था ना ये था, आसपास कुछ नहीं, ये केवल बीच का टीन वाला एक मकान होता था, और या ईशु दादी का ऑफिस है या दादी का ऑफिस है, वही एक हाल था जिसे जिसमें क्लास होती थी। और लोग कितने होते थे, 15-20, मैक्सिमम 20 हो जाएंगे, वो क्लास करते थे, बाबा मुरली चलाते थे, सुनते थे, छोटा सा परिवार था और बहुत अच्छा। और उसके बाद बाबा कमरे में जाते थे, बाबा चिट चैट करते थे, सुनाते थे, प्रश्न पूछते थे, कुछ जवाब देते थे, ऐसा छोटी सी फैमिली थी। बाबा मम्मा सबको जानते थे, अब तो देखो दादियां भी नहीं जानती बहुतों को, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, तब तो बाबा मम्मा सभी को जानते थे, जब से बात करते थे सभी से टोली खिलाते थे, ऐसा माहौल होता था जैसे पूरा एक हमारी फैमिली हमारी अपनी है, इस प्रकार से चलता था। तो हम एक बार आए बाबा से मिलने, जब पढ़ते थे तो हमने देखा उस वक्त बाबा की एज 80 साल की थी और हम 21-22 साल के होंगे, कितनी एज का फर्क था। तो बाबा को देखा, वो जो अभी शांति स्तंभ ना, जो कुछ था नहीं, विरास था, कोई पीछे मकान भी कोई नहीं था, एक ग्राउंड था। बाबा उस वक्त उस एज में एट द एज ऑफ 80 क्या खेल रहे थे? नहीं बैडमिंटन नहीं, और क्रिकेट खेल रहे थे। बताइए क्रिकेट कौन सी, जो नहीं बच्चे होते हैं खेलते हैं वो, तो सब बाबा के बच्चे खड़े हैं चारों तरफ और दादा विश्वरतन उनको बाबा बाल फेंकते हैं और वो बाबा लगाते हैं, हम पकड़ते हैं, हम तो बाहर खड़े थे अभी आए थे। तो मैं ये दृश्य देख के आश्चर्य खाया, मैं देखो वही दृश्य लग रहा है भागवत का, यमुना का कंठा जैसे वो कहते हैं गंगा का कंठा, वो बाल वो फेंकी जा रही है लेके जा रही है, वो जैसे हमने भागवत बहुत पढ़ी थी। तो वो देखा तो मैंने पिक्चर लेने की कोशिश की, बाबा की तस्वीर ले लूं, कैमरा मेरे पास था पुराने किस्म का। तो बाबा ने खेल बंद किया, क्या बच्चे पिक्चर मत लो। मैंने कहा अच्छा बाबा मना करते हैं तो नहीं लेते। बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया, बहुत देखो क्या बाबा चाहते हैं, बच्चे मेरा तो फोटो आएगा नहीं, ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ये शिवा ब्रह्मा बाबा का फोटो कैसे आएगा, आत्मा का तो आता नहीं फोटो, और ये शरीर तो किसी काम का नहीं, और शब्द बोले वो बोलता नहीं हूं किसी काम का। बाबा हर बात में समझाते थे कि देही अभिमानी बनो, देह भान में ना आओ, देखना तो आत्मा देखो, कितनी बात है, आत्मा से बात करो, आत्मा को देखो, शिव बाबा को देखो, किसी देहधारी को ना देखो, ये शिक्षा बाबा ने दी। फिर कहा अच्छा बच्चे का दिल ला तो फोटो ले भी लो, हमने ले भी लिया, रखे रखा नहीं कुछ, इस प्रकार से बाबा शिक्षा देते थे। तो फिर तो हमें जब एग्जीबिशन बननी शुरू हुई फिर हम बार बार आते रहे, मिलते रहे, करते रहे, बाबा भिन्न भिन्न सेवा देता रहे, हम करते रहे, कभी एक मास यहां रहे कुछ लिया। एग्जीबिशन चालू हुई तो हमने एक चित्र बहुत सुंदर सीढ़ी का बनवा करके आर्टिस्ट से बाबा को दादी प्रकाश बनी और दादा बिश्कुशोर उनके साथ भेजा। हमें एक बहुत खुशी है कि जब से ये सेवाएं शुरू हुई तब से हम बाबा के साथ और इन सभी पूर्वजों के साथ हमारा सब मेल मिलाप रहा। बड़ी दादी, दीदी, दादा विश्वकिशोर, दादा विश्वरतन, भ्राता जगदीश जी, दादी ब्रजेंद्रा जी सभी दादियों के साथ हमारा किसी न किसी रूप में सेवा में साथ रहा। ये बड़ा खुश नसीब है हम लोग, कितने सारे पूर्वजों के साथ है। फोटो वाले पूर्वजों की यहां नहीं है, आया कहीं? हाँ ये देखो, इन सभी को हम जानते भी हैं, इनके साथ मेल मिलाप मेरा इनसे मिले भी हैं। हम जब आया देखा तब मम्मा की माँ भी जिंदा थी और बाबा की युगल भी जिंदा थी। देखो मम्मा की माँ, मम्मा को पता क्या बोलती थी? मम्मा। और मम्मा क्या बोलते थे? बच्ची। बोलो देखो कितनी बड़ी बात है, माँ अपने बच्ची को माँ बोल रही है, मम्मा बोल रही है, और मम्मा उसको बच्ची बोल रही है। यह है कहीं किसी हिस्ट्री में ऐसा? ये देखो यहां हमने देखा। और बाबा अपनी युगल यशोदा को बोलता था बच्ची, और वो बोलती थी बाबा। तो ये कितना बड़ा देही अभिमानी, देह भान से परे, कोई फैमिली का किसी को भान नहीं, ये मेरा वो है, मेरा वो है। अभी भी हम देखते थे कभी जब दिल्ली में थे, दादी गुलजार की वो माता जी थी ऑलराउंडर पांडव भवन में, हमें नहीं मालूम था कि दादी ऑलराउंडर उनकी माता जी है, पता नहीं था किसी, क्योंकि देह अभिमान से बिल्कुल ये न्यारा बाबा का अंतर था। ऐसे ही फिर हम एग्जीबिशन बनी, चित्र बने, बाबा ने बहुत लेटर लिखे, बच्चे ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, तो बिंदन चित्र बनवा के हम लाया करते थे बाबा के पास। एक दफा 20 चित्रों का सेट हम लेके आए, हिस्ट्री हाल बन चुका था, वहां बाबा ने देखा, देख करके बाबा बड़े अच्छे उनको लगा, और फिर मुझे बुलाया अपने कमरे में। देखो कौन बुला रहा है, स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बुलाया। और मैं जब गया कमरे में, बाबा को अटेम्प्ट अच्छी लगी थी, यहां बच्चे ने अच्छा काम किया है, क्योंकि उन दिनों में तो आज तक कंप्यूटर से चित्र बन जाते हैं, तब तो एक एक चीज हाथ से बनती थी। तो बाबा ने बुलाया और कहा बच्चे मेरे साथ बैठो, गद्दी में साथ बिठाया। मैं तो संकोच करता था लेकिन फिर बिठा दिया। फिर बाबा ने वरदान दिया, देखो क्या वरदान दिया, बच्चे जो बाप की गद्दी सो, किसकी गद्दी? बच्चों की गद्दी। देख लो ये बाबा का वरदान है। और फिर आगे फिर बोला यहां भी और वहां भी। वहां कहां? बोलो कहां? बोलो सत्युग। तो आप भी तो ऐसे बाबा के बच्चे ने, बाबा ने आपको चुना है। जहां भी कोई आप सेवा करते हैं, जहां भी आप रहते हैं, चाहे घर गृहस्थ में रहते हैं, चाहे कोई सेवा करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, समझो ये किसका काम है? क्या बोलेंगे? बाबा का, हमारा नहीं, ऊपर वाला कराने वाला। हम ऊपर कहते हैं उंगली, उस वो करा रहा है, मैं उसका काम संभाल रहा हूं, गद्दी उसकी है। वो कहता मैं बैठा हूं, चिंता मत करो, तो बैठा है ये बात। तो मैं बड़ा खुश हुआ, देखो बाबा ने, मैं छोटा सा काम करके कितना बड़ा वरदान दे दिया। जो बाप की गद्दी है तो बच्चों की गद्दी यहां भी और वहां भी मिलेगी, फिर बताओ कितनी बड़ी बात है। बहुत काफी उमंग उत्साह है, और किसी को वरदान मिल जाए तो बहुत उमंग उत्साह आया। कितनी प्रदर्शनियां बनी, कितने चित्र बने वहां पर, हमारे दिल्ली में राम है, म्यूजियम बने, मेले बने, सारा वहां पर 3-4 आर्टिस्ट लगा करके सारा कार्य होता था। बाबा पत्र लिखते थे, खूब बाबा के पत्र आते थे, बच्चे ये बनाओ, बच्चे ऐसे बनाओ, डरने की बात नहीं, ये बनाओ, कोट ऑफ आर्म का चित्र बनाओ। देखो ये एक बना हुआ है पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज गेन, इस चित्र बनाओ। बाबा बड़े फोर्स से, ऑल माइटी अथॉरिटी जैसे बोलते हैं, ऐसे लिखते थे, बच्चे ये करो ये करो ये करो, डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, दुनिया में पता है कि ये भगवान का कार्य, पता लगना चाहिए कि भगवान बोल रहा है। इस प्रकार से खूब चित्र बने, मेले बने, प्रदर्शनियां बनी, जगह जगह बाबा ने हमको भेजा, कभी चेन्नई जाओ, कभी बॉम्बे जाओ, वहां म्यूजियम बनते थे, कभी कहीं वहां भी हम जाते थे। तो बाबा की सेवा में जो शुरू की थी वो और अच्छा हो गया, और हमें सेवाएं मिल गई, और बिजी हो गया बहुत। जैसे उसके बाद फिर ये बाबा का व्यक्त हो गए, तो हमें तो कभी सोचा नहीं था कि कभी हमें ऐसे अनुभव सुनाना पड़ेगा, कभी नहीं सोचा था। हमने कहा हम तो बच्चे, छोटे बच्चे थे ना, हम कह रहे थे बाबा जाएगा हम भी साथ साथ जाएंगे उनके, मच्छरों माफे कुड़ के बाद परम धाम में जाएंगे। ये कभी नहीं सोचा था बाबा 80 साल के हम 20 साल के, तो ये कैसे हो सकता है? ये कभी किसी को ये ख्याल भी नहीं आया। जगदीश भाई को भी ख्याल दिया, वो तो इतने इंटेलिजेंट थे, इतने जबरदस्त वो लेखक थे, कभी उन्होंने सोचा नहीं कि भाई बाबा की आयु तो 80 साल, मेरी है 20 साल, हम सब इकट्ठे कैसे जाएंगे? शारीरिक बंधन तो, शारीरिक लाश तो शारीरिक लाश है ना, जब वो अव्यक्त हुए तो सब स्तब्ध रह गए, भाई ये कैसे हो गया, न मन न चित हो कैसे गया, हम तो सब इकट्ठे उठ के जाने वाले थे, ये क्या हुआ? देखो, लेकिन देखो ये अव्यक्त पार चलना था, इतना बड़ा भारी, बच्चों की पालना होनी थी, ये भी हमने देखा, आप सभी ने देखा। इस प्रकार से चलते रहे चलते रहे, अब तो काफी समय बीत गया, 58-59 साल हो गए, काफी बाबा के कार्य में लगे हुए हैं, नजदीक भी हैं। बस एक हमारी तमन्ना हम सबकी होनी चाहिए, कौन सी तमन्ना है बताओ, कौन सी इच्छा है बोलो, है एक कोई एक बोले, सेवा तो हो जाएगी अपने आप, उसकी चिंता मत करो, आप अपनी चिंता करो, क्या बनना है? हाँ देखो, हमको बाप समान बनना है, ये हमें हमारी चिंता ना को कम सब होना हो कि हमको बाप समान बनना है, जैसे बाबा था बाबा जैसा बनना है। देखो बाबा कैसे थे, बाबा का हर कदम, हर कर्म, हर बोल और हर संकल्प सदा विशेष था, साधारण नहीं था, हम बता दें आपको, सदा विशेष। ही वॉज नॉट ए सिंपल पर्सन, विशेष थे, आदि देव थे, उनका हर कदम, हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल विशेष था। तो अगर हम चाहते हैं बाप समान बनना, हमारा भी ऐसा होना चाहिए, हर हमारा कदम भी ऐसा हो, कर्म भी ऐसा हो, चलना फिरना भी ऐसा हो, खान पान भी ऐसा हो, जैसे कि हम बाप समान जितना जल्दी हो सके बने। और बाबा का तो बनना भी आप सभी को है, बाबा का ये भी वरदान है। कौन बनेंगे, कौन बने? आप बनेंगे ना, बोलो हाँ या ना, हम बनेंगे। तो जल्दी से जल्दी बनो। अब देखो बाबा बहुत होमवर्क देते हैं, तो कैसे बने? देखो, बाप समान फरिश्ता बनने की चार स्टेजेस है। पहली स्टेज यह है, आप सोचो क्या आप पहली पहली स्टेज पार की है, वो स्टेज है विकर्माजीत। कर्मातीत बनने से पहले क्या हम विकर्माजीत बन गए? कोई विकर्म तो नहीं होता ना अभी? नो, यस, नहीं, अभी तो विकर्म नहीं होता, मैं समझता हूं कोई भी कर्म नहीं करता होगा, सब बाबा के प्योर पैस पीसफुल बच्चे हैं, ये तो बाबा को हमारे पर फेथ है। दूसरी स्टेज कौन सी है? विकल्प आतीत, कोई विकल्प ना हो, हमारी मन में बुद्धि में कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। अब इस वक्त बने इस स्टेज पर जिसका हम पहुंचे हैं बाबा के, यानी इतना ज्ञान सुनने के बाद, कोई 4-5 साल 6 साल से होंगे कई बैठे हैं, तो नो विकल्प, विकल्प माने बुरा संकल्प, वो कभी नहीं आना चाहिए, आए तो फौरन भगाओ, डोंट गिव हिम स्पेस, उसको मन में स्पेस मत दो, हटाओ फौरन, उससे बहुत नुकसान है। जो आपने पुरुषार्थ किया हुआ है अगर वो आया तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, इसलिए नो विकल्प, डरना चाहिए कि मुझे कोई अब विकल्प तो स्वप्न मात्र भी विकल्प ना हो, अगर हम चाहते हैं बाप समान। ये सेकंड स्टेज अभी तो सेकंड। थर्ड क्या है? व्यर्थ अतीत, व्यर्थ भी ना हो। देखो बाबा कहते हैं अब व्यर्थ का जमाना भी गया, व्यर्थ नहीं चाहिए, व्यर्थ से परे। व्यर्थ किसे कहते हैं? अभी देखो आप यहां बैठे हैं, आपको हिसार का ख्याल आ गया, कोई घर का ख्याल आ गया, तो ये व्यर्थ है ना। तो जिस समय जो संकल्प चाहिए वो संकल्प है, व्यर्थ से परे। फोर्थ है साधारण अतीत, हमारा कोई संकल्प साधारण भी ना हो, विशेष हो, विशेष। जैसे बाबा मम्मा के संकल्प, बोल, कर्म सब विशेष थे। बाबा ऐसा किसी को देख लेंगे ना, उड़ जाता था, बड़ा समझता था कि मैं बहुत लकी हूं, हर बात विशेष थी। तो हमारा भी इतना बाप समान बनना है तो वो विशेष होना चाहिए, हमारा संकल्प भी विशेष हो, बोल भी विशेष हो, साधारण नहीं चाहिए। ये साधारण अतीत, अब ये कैसे होगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, और कोई पुरुषार्थ नहीं। बाबा तो स्पष्ट कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, बार 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 मुरली में कहते हैं। मैं 19 मार्च की वाणी मुझे अभी तक भी याद है, मैं पढ़ता हूं, उसमें बाबा ने कम से कम 50 बार कहा होगा, 45 बार, बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। शिव बाबा की बाद में की, पहले आत्मा निश्चय करो, आत्मा निश्चय करो, तो ये पुरुषार्थ है। ये यदि केवल एक बार हमने कह दिया हम तो आत्मा है ही, और क्या, हमें कोई है ना, बुजुर्ग होते हैं, कोई फ्री होते हैं, कोई अभी नौकरी से फारिग है, कहता अब हमें और काम ही क्या है, बस अब तो मैं और बाबा को याद करना है। अरे करते भी हैं कि नहीं, कैसे करते हैं, इमर्ज करना पड़ता है उस संकल्पों को, यानी उसको इमर्ज करो, मैं कौन, हम तो जो कोशिश करते भी करते हैं, बताओ मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, लाइट हूं, माइट हूं, कर्म इंद्रियों का राजा हूं, स्वच्छ हूं, स्वतंत्र हूं, संतुष्ट हूं, कुछ नसीब आत्मा हूं, जो बाबा ने कहा। ये सब आत्मा के हमारे वो है, उमंग उत्साह लाने के वो है, अपने को याद कर, अपने को याद कर रहे हैं हम, तो ये जो है सो है वो। फिर हम घर में जाए, परम धाम को याद करें, घर को याद करें, अपने गुणों को याद करें, बाबा के गुणों को याद करते 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 मैं और मेरा बाबा हो जाए, बस बिंदु बन बिंदु को टिक जाए और सब कुछ भूल जाए। रमणीक याद को रमणीक बनाओ। बाबा से कितने हमारे संबंध हैं, देखो मैं तो भाई 9 संबंधों से याद करता हूं, और तो संबंध सर्व संबंध उसके है, लेकिन मैं 9 संबंधों से याद करता हूं, कहो तो सुना दूं आपको। वो 9 संबंध कौन से हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला संबंध कौन सा है बताओ आप, हाँ जी, मां का ना, बिल्कुल ठीक। फर्स्ट हमारी वो डियरेस्ट मदर है, बहुत अति प्रिय मां है ना माता, हमें ब्रह्मा मुख द्वारा जन्म दिया, प्रिय डियरेस्ट मदर, ज्ञान दूध पिलाया। दूसरा है भाई, इसका बहुत विस्तार है, मैं विस्तार नहीं सुनूंगा, टाइम हो गया। दूसरा है स्वीटेस्ट फादर, स्वीटेस्ट है वो, जिधर से भी आप देखोगे वो स्वीट है। हमारे जो बीच भाई कहते थे, गुड़ की भेली होती है ना, जहां से टेस्ट करोगे स्वीट होगा, वो भी मारा है बाबा जो है वो स्वीटेस्ट है, मीठे से मीठा है। कभी हम तो हमारे साथ हम तो बहुत समय रहे, कभी आज तक उनके मुख से ऐसा कोई शब्द भी नहीं निकला, ब्रह्मा बाबा के इतना स्वीट है, हमेशा मीठे मीठे बच्चे कहेगा, पहले मीठे बच्चे कहेगा और अंत में जब याद कर रहा तो मीठे मीठे कहेगा, दो बार मीठे कहता है। देखो स्वीटेस्ट फादर, स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा देता है। थर्ड कौन सा है, हाईएस्ट टीचर है, हाईएस्ट, और हाईएस्ट टीचर क्या देता है हमको, सिंपलेस्ट पढ़ाई और 21 जन्मों का राजभाग देता है, ये याद करना पड़ता है। होलीएस्ट सतगुरु, पतित पावन सतगुरु हमारा, हमें वरदान देता है, आशीर्वाद देता है, हमको हमारी पालना करता है वरदानों से, आशीर्वादों से, मुक्ति जीवन मुक्ति वर्षा देता है। उसके बाद क्या है, अनफेलिंग फ्रेंड, अगर मित्र भी है तो वही है, सब मित्र धोखा देने वाले। हमारे पास कैड में बहुत लोग आते हैं, कल हमारा 6 घंटे कैड में ये वो था, बातचीत करने का था युगलों से, कितने लोगों को मित्रों ने वो कर दिया, धोखा दिया, उनके हाल खराब हो गए। हमारा बाबा ऐसा नहीं है, सदा हमारा साथी, उनका हाथ पकड़ के रखो, सदा साथ निभाने वाला है। आप कभी ज्ञान अमृत में पढ़ते होंगे कैसे बाबा साथ निभाता है, कमाल है। बताओ, हम पहले वो डालते नहीं थे, मैंने क्या पता एक व्यक्ति जो लिख रहा है ठीक भी है भी गलत है, कहीं ऐसे गप तो नहीं लगा रहा, लेकिन उनकी टीचर कहती ठीक है ये, तो हम तब लिखते हैं, पहले टीचर से पूछते हैं ये जो व्यक्ति लिख रहा है मुझे बाबा ने ये मदद की मुझे ऐसे मदद की ऐसे बचाया, तो कहते हैं हाँ ये ठीक बात है, हम तब उसका अनुभव लिखते हैं उनका ज्ञान अमृत में। तो वो अनफेलिंग फ्रेंड है, सदा साथ निभाने वाला। और क्या है, सुनो ना साजन, सुना भाइयों, कौन है साजन आपका, कौन है शिव बाबा, हमारा साजन भी है, आपका भी सबका साजन भी है। क्या करता है, प्यार करता है, श्रृंगार करता है, ज्ञान को कहाँ ले जाता है, पियर घर, फिर कहाँ भेजता है, ससुर घर भेज देता है, विष्णुपुरी ससुर घर ना, वहां भेज देता है। तो ये मर्ज करके याद करना है, रमणीक बनाना है याद को, बिंदु बन बिंदु को तो याद करना है, विकर्म विनाश होंगे, लेकिन शुद्ध संकल्पों को खजाना जमा करने से भी बहुत कुछ ना कुछ तो अग्नि जलती रहती है ना। फिर वो और क्या है, हमारा सुप्रीम सर्जन है, हमारा सब कुछ ठीक करने वाला वही है, फेथफुल चाइल्ड है, सुन लो आप, और धोखा दे जाएंगे बच्चे, छोड़ जाएंगे, कहते वो ओल्ड होम में रहो, लेकिन वो बाबा तुम्हारा फेथफुल चाइल्ड है, हमारी उंगली पकड़ेगा, कहाँ ले जाएगा, परम धाम अपने घर ले जाएगा, रियलिटी है ये, सब जवाब दे जाएंगे, लेकिन बाबा हमारे साथ उंगली पकड़ करके, वो दिखाते ना बच्चे को, वो जब मरता है तो आगे लाइट लेके ले आते हैं वो दीपक, तो वो कोई बचेगा नहीं, वो तो फेथफुल हमारा बाबा ही उंगली पकड़ के हमको कहाँ ले जाएगा, अपने घर भी ले जाएगा, फिर भेज देगा अपने साथ, फेथफुल चाइल्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारा मोस्ट बिलविड माशूक है, शिव क्षमा है, देखो उस पर सब कुछ कुर्बान है हमारा, ये होना चाहिए फेथ, हमारा मोस्ट बिलविड ब्यूटीफुल सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, ये सब जो है इमर्ज करके बाबा से बातें करनी चाहिए। हाँ, बिंदु बन के याद भी करो। मैंने दादी गुलदार जी से पूछा, दादी मुझे ये तो बड़ा अच्छा लगता है संबंधों से याद करना, ये करना, और वो बाबा ने जो एक युक्ति बताई, पांच स्वरूपों को याद करो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। कहते ठीक है, ये भी करो वो भी करो, दोनों करो, जिससे क्या है अपने शुद्ध संकल्पों को पावर को बढ़ाते जाओ। फिर कभी मिलेंगे, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। भाई जी जब साकार मम्मा बाबा की और अपने अनुभव की बातें सुनाते थे तो मैं देखती थी अनुभव के सागर में सब खो गए, जो हमें कैसे एक घंटा बीत गया मालूम नहीं पड़ा। मुझे भी यहाँ आने की जरा भी इच्छा नहीं होती थी, लेकिन थोड़ा प्रोग्राम चेंज हुआ है, इसीलिए आज आप सभी को सौगात मिलेंगी। अभी तो सबसे पहले भाई जी का हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं, बहुत बहुत थैंक्स।